जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद संख्या है 54 से लेके आगे तक पढ़ेंगे क्योंकि जहां तक तात्पर्य नहीं है तात्पर्य इकट्ठे पढ़ेंगे ये मैं पढ़ूंगा आप सुनिए। तो 54 है हीन काले महाकाय एक पक्षी आईडा ओंटे करी अन्न सह थाली नंग गेला। जब यह दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया तब एक बड़ा सा पक्षी उस स्थान पर प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबा ली और उसे लेकर उड़ गया। 55 है भूत गनेर ऊपर अन्न पड़े अमे दया हया बोधाचार्य माथाए थाली पड़ी बाजिया। वह अद्भुत भोजन उन बोधों के ऊपर गिर पड़ा और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बोधा आचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वह उसके सिर पर गिरी तो वह बड़े जोर की आवाज हुई तेरा छे पड़ी थाली माथा काटी गेला मूर्छित हनिया आचार्य भूमि ते पड़ी थाली धातु की बनी थी अतएव जब उसकी धार उस आचार्य के सिर पर लगी तो घाव हो गया फलता वह आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। 57 हाहाकार करी कांदे सब शिष्य गाना सबे आसी प्रभु पदे लैल शरणा। जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर दौड़े। तुम्ही तो ईश्वर साक्षात क्षम अपराध जियायो अमार गुरु करह ये प्रसाद। उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा कृपया हमारा अपराध क्षमा करें हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दें। 59 प्रभु कहे सबे कह कृष्ण कृष्ण हरि गुरु करने कह कृष्ण नाम उच्च करी। तब महाप्रभु ने उन बोध शिष्यों से कहा तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नामों का उच्चारण करो। 60 तोमा सबार गुरु तबे पाइबे चेतना सब बोध मिली करे कृष्ण संकीर्तना। इस तरह से तुम्हारे गुरु की चेतना प्राप्त होगी श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बोध शिष्य कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे। इकट्ठा पढ़ेंगे हम लोग। गुरु करने कहे सबे कृष्ण राम हरि चेतन पाइया आचार्य बले हरि हरि। गुरु करने कहे सबे कृष्ण राम हरि चेतन पाइया आचार्य बले हरि हरि। गुरु करने कहे सबे कृष्ण राम हरि चेतन पाइया आचार्य बले हरि हरि। कृष्ण राम और हरि के पवित्र नाम चेतना
चेतना
पाइया पाकर
आचार्य
प्रमुख बले बोलने लगा हरि हरि भगवान का नाम हरि हरि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जब सारे शिष्य कृष्ण राम का हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई। वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका करते हैं कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्ध शिष्यों को कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए दीक्षित कर दिया और जब वे कीर्तन करने लगे तो वे वास्तव में भिन्न व्यक्ति बन गए। उस समय वे बौद्ध या नास्तिक नहीं रहे अपितु वैष्णव बन गए। फलस्वरूप उन्होंने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मान ली। उनकी मूल कृष्ण भावना जागृत हो उठी और वे तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे तथा भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए दीक्षित करके माया के पास से छुड़ाने वाला गुरु ही होता है। इस तरह सुप्त मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके अपनी चेतना को जागृत कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे शब्दों में गुरु सुप्त जीव को जगाकर उसे मूल चेतना प्रदान करता है जिससे वह भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। दीक्षा का यही प्रयोजन है होता है। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। यह ध्यान देने की बात यह है कि बोधों के गुरु ने अपने शिष्यों को दीक्षा नहीं दी, प्रत्युत वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा दीक्षित हुए और तब उन्होंने अपने तथाकथित गुरु की ओर दीक्षा दी। यह परंपरा पद्धति है। वास्तव में वह तथाकथित बौद्ध आचार्य शिष्य के पद पर था और जब उसके शिष्यों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली तो वे उसके गुरु बन गए। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बोधाचार्य के शिष्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। जब तक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त न हो तब तक कोई गुरु नहीं बन सकता। हमें समस्त ब्रह्मांड के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को मानना चाहिए जिससे हम समझ सकें कि गुरु तथा शिष्य कैसे बना जाए। ओम अज्ञानति विनाशस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराणी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकरुण भयश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण वेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार। जैसे जानते हैं कि ये अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा पे निकले और तीर्थ यात्रा करते करते जब इस गांव में पहुंचे तो वहां पे एक बोधा आचार्य थे। बोधा आचार्य उनको मिलने आए और उनसे वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जय श्री श्री राधिका रमन भगवान की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की जय, जय श्री रघुपाद की। तो उनसे वो शास्त्रार्थ करने आए, मतलब तर्क के आधार पर वो उनसे वार्ता करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तर्क के आधार पर भी उनको हरा दिया। जब हरा दिया तो उनके इतने सारे जो बुद्ध के वो बोधाचार्य के जो शिष्य थे वो बहुत ही लज्जित हो गए, वो शर्म आई उनको। और उनको लगा कि एक वैष्णव, एक ऑर्डिनरी वैष्णव के हाथ से हम हार गए। तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, ये षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट लेके आए और महाप्रभु कहते हैं ये महाप्रसाद है, महाप्रसाद ले लो। महाप्रसाद क्या हो, तो मतलब ऐसे भोग था महाप्रसाद। तो वैष्णव जो है, जो भगवान के भक्त हैं, वो भोग लगाते हैं ना। तो ऐसे कोई लेके आ गए अन्न की बनी हुई चीजें और कहते हैं कि आप खाइए। तो उसी वक्त एक, जैसे आपने सुना, उसी वक्त एक पक्षी आया। वो पक्षी ने वो प्लेट ली, वो प्लेट का सारा प्रसाद है वो तो बोध शिष्यों के सिर पे डाला और वो थाली जो है था मारी उसके, जो गुरु था उनका बोधाचार्य उनके सिर पे मारी। वो इतनी तेज लगी क्योंकि उसकी इतनी तेज धार थी, इतनी तेज लगी कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। तब इनमें हाहाकार मच गया। तब ये जो बोध शिष्य हैं इनको कहा तो हमारे गुरु जी तो कहीं प्राणी ना छोड़ दें। तो वो चिंतित हुए और आके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़े और चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि बचाओ इनको, बचाओ, आप तो साक्षात भगवान हो, आप तो साक्षात भगवान हो, बचाओ बचाओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इनको कहा कि ठीक है, आप अपने आचार्य जो है, अपने गुरु जी हैं, उनके मुंह में जाके बोलो कृष्ण राम हरि, बोलो बोलो, ये जाके बोलो। तब जब उन्होंने बोला तो उनकी चेतना वापस आ गई और वो गुरु भी फिर हरी हरी बोलने लगे। नहीं है ना, इसी तरह से गुरु को चेतना प्राप्त होगी। जब सारे शिष्य कृष्ण राम हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बोधाचार्य को चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा। मतलब वो भी जो है बुद्ध था लेकिन नास्तिक था, मानता ही नहीं था, वेदों को मानता नहीं था, भगवान को नाम को नहीं मानता था, लेकिन वो भी हरि हरि, ये है चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। तो यहाँ पे श्री रघुबा जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। यहाँ पे श्री रघुबा जी बता रहे हैं कि कैसे जो है गुरु जो है शिष्य को माया के पास से छुड़ाता है। गुरु वो है जो हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षित करता है शिष्य को। और यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूसरे शब्दों में गुरु सुप्त जीव को जगाकर उसे मूल चेतना प्रदान करता है जिससे वह भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। तो यही हमारी मूल चेतना है। जीवेर स्वरूप हरे कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी मूल चेतना है ना। हम उस चेतना को भुला चुके हैं, सो गए हैं, सुप्त हैं। उस चेतना के प्रति हम अब हम चेतन नहीं है उस स्थिति के प्रति, कॉन्शियस नहीं है हम, जो है सो गए हैं, भूल गए हैं। जैसे जैसे व्यक्ति को कभी बहुत बड़ा झटका लगता है ना, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ झटका लगता है, सिर पे बहुत तेज चोट लग जाती है, तो क्या होता है कि वो भूल ही जाता है सब कुछ। उसको हमारी इंग्लिश मेडिकल टर्म में बोलते हैं और टोटल अमेनेजिया, टोटल अमेनेजिया, अमेनेजिया का मतलब होता है कि भूलना, यादाश्त हो जाना। टोटल अमेनेजिया का मतलब होता है कि उसको कुछ भी याद नहीं, उसको ये भी नहीं याद नहीं मेरा नाम क्या है। उसकी पत्नी सामने आती है, वो पत्नी को पहचान नहीं पाता, माँ बाप को पहचान नहीं पाता, रिश्तेदार उसको मिलने आते हैं हॉस्पिटल में, वो पहचान ही नहीं पाता कौन मेरा मामा है, चाचा है, कौन है, किसी को पहचान नहीं पाता। और उससे पूछो कहाँ रहते हो, उसको ये भी नहीं पता, उसका घर का पता भूल जाता है। इसी तरह से हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, शाश्वत हमेशा का संबंध है, वो कभी टूट ही नहीं सकता, शाश्वत संबंध है सबका, सब जीव का, हर एक जीव का भगवान के साथ एक खास संबंध है, यूनिक, विशिष्ट, खास संबंध है, जो वो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी वो टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता वो संबंध। लेकिन क्या है कि हम इस संसार में आए, जैसे ही माँ के पेट में थे तो तब तो याद था हमें, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो बहुत ही दुखदायी स्थिति में होता है ना? इतनी सी जगह होती है, इतनी सी जगह, देखो इतनी सी जगह माँ का जो गर्भ है इतना सा होता है, उसमें आप तोड़ मरोड़ के आपको रखा जाता है, आपका ऊपर होती है, देखा है फोटो में, देखा होगा कई लोगों ने गर्भ में जैसे बच्चा होता है ऐसे हाथ हो गए होते हैं उसके, और 9 महीने रहना पड़ता है उसको वहां। आपको ये सारे इतने बड़े कमरे में बंद कर दिए, 9 महीने के लिए रह लो, ये सारा कुछ देंगे, खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए देंगे, टेलीफोन भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, रह लो तभी भी नहीं रह पाएंगे हम, सारी सुविधा। जैसे होम अरेस्ट होता है, सुना आपने होम अरेस्ट, होम अरेस्ट सुना ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जेल में डालते हैं, होम में उनके घर में सारी सुविधाओं के साथ अरेस्ट कर देते, जाना नहीं कहीं पर, तभी भी रह नहीं पाते, वो भी हमें जेल लगता है। और इतनी सी जगह पे, वहां पे मूत्र कर रहे हो, वहां पे लैट्रिन कर रहे हो, सब गंध में रह रहे हो 9 महीने, तो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, भगवान को याद करता है, भगवान मुझे यहां से निकालो, आप ही निकाल सकते हो, कौन निकाल सकता है, मैं बाहर आके आपका भजन करूंगा, आपको भूलूंगा नहीं, आपका भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा। और जैसे ही वो इतनी सी जगह होती है, इतनी सी जगह से जैसे ही उसका सिर टकराता है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और रोता चिल्लाता, सिर ऐसे लाल हो गया होता है, झटका लगता है, सब कुछ भूल जाता है, भूल जाता है कि भगवान को प्रॉमिस किया था गर्भ के अंदर, टोटल हमें नहीं दिया, भगवान को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, अपने संबंध को भूल जाता है, और सामने जो औरत होती है उसको कहते मम्मी हो गई मम्मी, पापा हो गया पापा, वो रिश्तेदार चाचा दादा, ये रिश्ते बन जाते हैं, कोई रिश्ता नहीं है उनसे। जैसे वो व्यक्ति होता है जिसको याददाश्त हो गई है, वो नर्सों को, डॉक्टरों को, वो कर्मचारियों को, अस्पताल के कर्मचारियों को अपना समझता है, वो पत्नी आके तो पहचानता नहीं कौन है, माँ आती है तो ऐसे देखता है कौन है, देखा ही नहीं कभी। ये हाल है सुप्त अवस्था, ये सुप्त अवस्था में है हम, असली जो संबंध है हमारा उसको भूल गए, टोटल अमेनेजिया हो गया, पता ही नहीं भगवान कौन है, वो भगवान कौन है, कौन भगवान है, कोई कहता है वैष्णो माता है, कोई कहता है शिरडी के बाबा है, कोई कहता है ये प्रभु कुमारी वाले हैं, कौन है भगवान, प्रभु जी कंफ्यूज हो गया, भगवान को भूल गया, नाता भूल गया, भगवान कौन है भूल गया, टोटल अमेनेजिया। ये है हमारी अवस्था, सुप्त अवस्था। गुरु आके जो है हमें मूल चेतना प्रदान करते हैं जी, गुरु का कितना बड़ा कार्य है सोचो आप। इसलिए गुरु ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, गुरु ने जो हमें दिया है उसका हम जो वो उसका कोई मूल चुका नहीं सकते, कुछ भी करके मूल नहीं चुका सकते हम, कुछ भी कर लो आप, उल्टे लटक जाओ कुछ कर लो, मूल नहीं चुका सकते। गुरु का मूल चुकाने के लिए सिर्फ क्या करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, बस। चुका तो सकते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें जगा दिया। हमारा शाश्वत संबंध जो है, दीक्षा का यही प्रयोजन होता है। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। और फिर श्री लघुबा जी बता रहे हैं कि जब तक किसी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो गुरु नहीं बन सकता, है ना। हमें समस्त ब्रह्मांड के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को मानना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि गुरु तथा शिष्य कैसे बना जाए। इससे पहले जब तक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त ना हो, तब तक कोई गुरु नहीं बन सकता। वही जो है, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो आए हैं इस संसार में, चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं ना, तारने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेशों का पालन करके हम गुरु बन सकते हैं ना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सारे गुरु बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु सारों को गुरु बनाना चाहते हैं, सबको, एक एक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते हैं। क्या करना है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिलो, जिसको देखो, जिससे बात करो, उसको कृष्ण का उपदेश दो, कृष्ण की बात करो उससे। तो गुरु को खुश करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पे बताया कि जैसे जो बोधाचार्य थे उनके बड़े थे, उनके हिसाब से उनके गुरु थे वो, है ना। लेकिन असल में वो गुरु नहीं थे, असल में गुरु उनके शिष्य बन गए, असल में उनके शिष्य गुरु बन गए। इसी तरह से ये जैसे हमारे यंग ब्रह्मचारी हैं ना, तो ये गुरु हैं अपने माता पिता के। अगर वो भक्त नहीं है, अगर वो भगवान के नामों का जप नहीं करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, तो ये गुरु हो गए, क्योंकि तो इनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है। तो ये चाहे तो अपने माता पिता, अपने बड़े लोगों को भी जो गुरु के पद पर है, उनको भी आध्यात्मिक चेतना प्रदान कर सकते हैं, जैसे यहां पर किया है ना। वास्तव में वह तथाकथित बोधाचार्य शिष्य के पद पर था, जब उसके शिष्यों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली तो वे उसके गुरु बन गए। क्योंकि आत्मा का, ये आत्मा का संबंध है ना, आत्मा की बात है, शरीर की बात नहीं है। शरीर किसी का बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो कम अनुभवी हो सकती है ना। आत्मा का शरीर से संबंध नहीं होता ना। जैसे मान लो कोई बुहेल है, इतनी बड़ी बुहेल होती है, उसकी आत्मा बड़ी होती है, चींटी की आत्मा छोटी होती है। चींटी में छोटी आत्मा होती है, बुहेल में बड़ी आत्मा होता है क्या? आत्मा का साइज वही होता है, एक सिर के बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर, वही होती है, तो छोटी सी। वही आत्मा चींटी में होती है उतने साइज, उतने ही साइज की आत्मा बुहेल में होती है, हाथी में होती है। अब आप भी सुनिए प्रभु जी, आप भी सुनिए, आपको नहीं सुन रहे, आप भी सुनिए लेक्चर को।
मैं सुन रहा हूँ
कर रहे हैं ना, जब
ये चलता रहता है।
नहीं, आप जब सुन रहे हो या क्लास सुन रहे हो?
आपकी क्लास भी सुन रहा हूँ।
क्या फिर जब नहीं सुन रहे हो?
आप कोई शब्द नहीं बोलिए, मैं सारे याद है।
बोलो।
अभी आपने चेत गुरु के बारे में बताया
है
कि चेतना जगाने वाला गुरु है। ये ब्रह्मचारी भी जो है आपके माँ बाप के गुरु बन सकते हैं, चेतना जा रही है।
वेरी गुड। और
आपने एक गुरु की बात बताई जिसने बहुत धर्म के प्रचार में किया, तो उसके साथ स्त्री बिठाई और फिर उस गुरु के सर पे लगी और फिर उसको कैसे चेत आया वो भगवान।
किसने 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 तस्त्री मारी?
उसने गुरु जो जो
आप जैसे आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि क्या है, जब हम जप करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र को हमें सुनना चाहिए। ये विधि है, जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्न हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है यही है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस इज चैंटिंग यूर 16 राउंड्स अटेंटिवली डेली। सारी जो सेवाएं हैं प्रभुपाद जी ने दी है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि आप जप करो अपना रोज, 16 माला जप रोज करो, सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। सारी सेवाएं छोड़ के ये करो, लेकिन अटेंटिवली करो। अटेंटिवली का मतलब है कि उस समय करो जब आप सुन सको। तो हमारे कानों में एक भगवान ने जो है एक दोष दिया है कि एक बार में एक ही बात सुनता है। या तो आप जब सुनोगे या आप क्लास सुनोगे। अब ध्यान से क्लास सुनो ताकि आप जब ध्यान से कर सको। क्लासेस इसीलिए बनाई है प्रभुपाद जी ने ताकि हमारा विश्वास, यहां पर भी देखो प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र की चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र तो इसीलिए हमारे आंदोलन को भी हरे कृष्ण आंदोलन कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से करते नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम है ये। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान आ रहे हैं हमारे पास, भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे आप बोलते हरे कृष्ण एकदम आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान पूरा नहीं होता तो बेचारे दुखी होते हैं। इसलिए 10 नाम अपराधों में सबसे बड़ा अपराध कहा है, ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि यही अपराध जो है ये सारे अपराधों की जड़ है। बाकी जो सारे 10 नाम अपराध हैं, निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना, देवी देवताओं को भगवान के समान समझना, जितने भी अपराध हैं, नाम के बल पर पाप करना आदि आदि, उनकी जड़ क्या है? ध्यान पूर्वक जप ना करना। क्यों क्यों, क्या कारण है, लॉजिक क्या क्या है इसके पीछे? यस, वेरी गुड। क्योंकि हमारे अपराध होते इसीलिए क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। कृष्ण भावना भावित नहीं है तो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये उभरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित होने से ये चीजें भाग जाती हैं, है ना? ये चीजें तो भाग जाती है। जो कृष्ण भावना भावित है उसमें लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष नहीं, ये नहीं पाएंगे आप। जब ये नहीं होंगे तो निंदा क्यों करोगे किसी की आप, है? क्यों नहीं आज्ञा मानोगे आप? बड़ों की आज्ञा क्यों नहीं मानोगे आप? तो इन सब कारणों से ही हम ये सारे अपराध करते हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक जप करना। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आत्मा जो है वो उसकी कोई उम्र नहीं है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कहते हैं जी ये बड़े अनुभवी हैं, जी कहते जैसे पिता सोचता है वो तू मुझे सिखाएगा, वो मैंने तुझे जन्म दिया, मेरे सामने बड़ा हुआ है, वो मैंने तो तुझे शिक्षा दी है, मुझे शिक्षा देने चला। हाँ तो कहते हैं माता पिता को, वो मुझे शिक्षा दे रहा है, देखो कल का बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, मैंने ही पैदा किया, बड़ा किया, वो मुझे शिक्षा देने चला। पर वो ये नहीं देख रहे कि आत्मा का कोई थोड़ा उम्र है। आत्मा पता नहीं कितनी तपस्या करके आई है पिछले जन्म में, क्या कितने बड़े योगी थे। जैसे हिरण्यकशिपु है और प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे हैं और हिरण्यकशिपु तो राजा, इतना बड़ा राजा है, राजा इंद्र देवताओं का राजा आके उनके पांव दबाता है। ऑर्डिनरी राजा थोड़ा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा महान राजा है। तो ऐसे थोड़ा राजा बन गया हो कि इंद्र जो उनके पांव दबाते हैं, कोई ऑर्डिनरी राजा थोड़ा है। उस राजा का एक छोटा सा बच्चा 5 साल का कह रहा है दैत्यराज, दैत्यराज बोला है, दैत्यराज भगवान तो कण कण में है, सब जगह है भगवान, बताओ उनको वो शिक्षा दे रहा है। भगवान सब जगह है, सब जगह भगवान है, नवदा भक्ति की शिक्षा दे रहा है। तो यहां पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है जिसके आप शिष्य हो, क्योंकि असल में पिता जो है पुत्र का गुरु होता है। पिता की जो स्थिति है, पद है, वो गुरु का है। इसीलिए हमारे भागवत शास्त्रों में कहा है कि पिता का, माता का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को भगवान के धाम लेके जाएं, क्योंकि वो गुरु के पद पे है। अगर वो भगवान के धाम नहीं ले जा सकते तो बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो आप, पैदा मत करो। ऐसे तो जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियां सुअर सब का बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप क्यों पैदा कर रहे हो? आप तो मनुष्य हो, आपको अगर बच्चे पैदा करने हैं तो उनको भगवान के धाम लेके जाओ, ये है आपका आपका कर्तव्य, ये है। आप पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो। पक्षी का कर्तव्य क्या है कि उसने बच्चा पैदा किया, अंडे से बाहर निकला, उसको खाना ला के दे दिया, वो जब उड़ना सीख गया तो भूल गए, खत्म, सीन खत्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उसको उड़ना सिखा दिया, सामने आ जाएगा, दाना चुगेगा, खत्म सीन। मनुष्य का सीन यहां खत्म नहीं होता। मनुष्य का मतलब यह है कि आपने बच्चा पैदा किया, अब भगवान के धाम लेके जाओ उसको, नहीं तो लेके क्यों आए संसार में? अब मनुष्य हो, पशु थोड़ा हो। तो इसीलिए आपको पिता अगर बनना है, माता बनना है, तो अगर मान लो आप माता पिता बन गए अब, तो आपका बच्चा जो है भक्त बन गया, तो उसकी बात सुन लो, फिर आपने सुनानी थी उसको बात, तो वो सुना रहा है तो इतना तो कर लो। इसमें भी लड़ाई झगड़ा शुरू, इसमें भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता नहीं? तो इसीलिए ये बातें हमें समझनी है, क्योंकि समाज जो है, संसार जो है, वो दूसरी ही कलयुग के पूरी रफ्तार से चल रहा है। तो ये सारा का दायित्व जो है हम इस्कॉन के भक्तों पे आ रहा है, क्योंकि तरह तरह के यहाँ पे कलयुग में तरह तरह की संस्थाएं हैं, तरह तरह की बातें हैं। प्रभुपाद जी की जो इस्कॉन एक संस्था है प्रभुपाद जी ने बनाई है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक शक्तावेश अवतार भगवान ने भेजे हैं इस कलयुग में उद्धार करने के लिए। तो हम उनके पक्के अनुयायी बनना है प्रभुपाद जी के। पक्के अनुयायी कैसे बनना है? इसी तरह से जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको लोगों को बोलना है, घबराना नहीं आना, एज इट इज बोलना है। प्रभुपाद जी की वाणी को जब आप बोलोगे तो देखो कैसे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पहले उसको हमें समझना है, फिर हमें बोलना है, बताना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से बताया कि गुरु की आज्ञा, गुरु का आश्रय, गुरु को खुश करना। प्रभुपाद जी को इतनी सफलता इसीलिए मिली क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आश्रय समझ के, उनका मनोबीज समझ के उनको खुश किया। आप जानते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य क्या है, कि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, आपका गुरु जो है, उसको प्रसन्न कर लो, बस खत्म, सीन खत्म, यहां फुल स्टॉप, बस। अगर आपसे गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, आप में गाते नहीं है, है प्रभु जी आपसे क्या आपका इनिशिएटिव नाम बोल रहा हूँ, हाँ प्रेम कांता, प्रेम कांतर हो गाते हैं ना आखिर में गुरु अष्टकम में, क्या यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं आपका जो प्रसाद है, आपकी जो खुशी है, मतलब भगवान की खुशी है। आप अगर खुश हो गए मतलब भगवान खुश हो गए। अगर आप जानना चाहते हो कि भगवान आपसे खुश हैं तो अपने गुरु की शक्ल देख लो, वो कैसे हैं, खुश हैं आपसे नाराज हैं? अगर नाराज है तो भगवान नाराज नहीं आपसे। इसीलिए जो असली गुरु है वो नाराज होते नहीं शिष्य से, वो जानते हैं ये बात है ना। जैसे हनुमान जी जब बड़े बड़े पत्थर ला के डाल रहे हैं समुद्र में, तो डालने से पहले राम लिख देते हैं उसको, राम तो डूबते नहीं है, वो तैर जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं मैं भी जरा सहायता करूं, इनकी सब लगे हुए हैं, सारी सेना लगी हुई है, बंदर छोटे छोटे, थोड़ी सी जो वो गिलहरी है वो भी लगी हुई है, तो मेरा ही तो पुल बना रहे हैं, मेरे मैं भी करूं। तो एक पत्थर उठाते हैं वो भी डालते हैं, वो डूब जाता है। भगवान हैरान हो जाते हैं, भगवान पूछते हैं हनुमान से, हनुमान ये क्या, तू मेरा नाम लिख के जो पत्थर रख रहा है वो तो तैर रहा है, और मैं अपने हाथों से, मैं राम अपने हाथों से जो पत्थर रख रहा हूं वो डूब गया, ये क्या सीन है? तो हनुमान जी कहते हैं भगवान जी आपने जिसको छोड़ दिया वो कहां से तैरेगा, वो डूबेगा, इस तरह से गुरु किसी को नहीं छोड़ते, गुरु ने छोड़ दिया तो फिर तो उसका कोई यस्या प्रसादा न गति तो भी तो कहीं ब्रह्मांड में कोई वो जगह ही नहीं मिलेगी उसको, है ना। एक भजन में वो है ना, वो यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, है ना, क्या कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर हरि के स्थान पे आपने अपराध कर दिया, यहां मंदिर में कोई अपराध कर दिया या कोई तीर्थ स्थान में जाके अपराध कर दिया, हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, आपने हरि नाम लिया खत्म, सीन खत्म हो गया, अपराध मुक्त हो गया। तोमा स्थाने अपराधे नाहीं परित्राण, अगर गुरु के वैष्णव के स्थान पे उनके चरणों में अपराध कर दिया फिर कहां गति है, न गति को तो भी फिर कहीं गति नहीं है। इतनी बड़ी स्थिति है गुरु की, इसलिए एक अपराध माना गया है गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, है ना। तीसरा अपराध नाम अपराध में आता है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण व्यक्ति समझना, कैसा ही मेरी तरह ही व्यक्ति है, नहीं गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण नियमों के हिसाब से उनको कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप, धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। गुरु को समझने के लिए जब गुरु चाहेंगे वही रिवील करेंगे, है ना। हरे कृष्णा, प्रभु जी क्या हुआ, मेडिटेशन में चले गए क्या, क्या सुना, इसीलिए गुरु की स्थिति को समझना चाहिए। वो गुरु की स्थिति को समझने के लिए कैसे समझेंगे हम, क्या करना पड़ेगा, हाँ, और गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, क्योंकि गुरु रिवील करेंगे अपनी स्थिति, आप उनको नहीं पकड़ सकते। जैसे सूर्य को आसमान पे है, सूर्य आसमान पे है, तो कोई सोचे रात को 12 बजे कि मैं सूर्य को ढूंढता हूं, कैसे, मेरे पास बहुत बड़ी टॉर्च है, इतनी बड़ी टॉर्च है आसमान तक चली जाएगी, वो कहीं आसमान में इधर उधर तो होगा, अंधेरे में छुपा हुआ है, अभी ढूंढता हूं उसको, ढूंढ लेगा सूर्य को, पागल है भैया, वेट कर ले, सुबह जब सूर्योदय का समय होगा अपने आप ही नजर आ जाएंगे, मूर्ख इसी तरह से गुरु और भगवान है, गुरु और भगवान को आप नहीं पकड़ सकते अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से, अपने अपनी चीजों से, करना है हमें, लेकिन रिवील वो तभी करेंगे जब आप सब प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। गुरु की स्थिति और भगवान की स्थिति एक जैसे है, इसलिए कहा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भावयत एव सद्भिः, क्या मतलब, वेरी गुड, साक्षात हरि है, कौन कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं, साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कह रहे हैं गुरु साक्षात हरि है, और साधु भी कह रहे हैं, सिर्फ शास्त्र नहीं साधु भी कह रहे हैं। तो किस तरह से हरि है, क्योंकि वो पूर्ण, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे शीशा होता है ना, शीशे, तो शीशे की जो पीछे चीज है वही नजर आती है आगे ना, जैसे वो प्रभुपाद जी नजर आ रहे हैं शीशे के थ्रू, प्रभुपाद जी नजर आ रहे हैं शीशा नजर आ रहा है, ऐसे गुरु ऐसे पारदर्शी होता है, भगवान के दर्शन कराता है, भगवान नजर आते हैं उनको, उनको देखते हो भगवान नजर आते हैं, ऐसे होते हैं गुरु, इसलिए उनको आप अगर उनको प्रसन्न कर लोगे तो, अगर आप वो प्रसन्न नजर आ रहे हो तो पीछे भगवान नजर आ रहे हैं, प्रसन्न है इसलिए वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं, ऐसे गुरु ऐसे होते हैं, पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए उनके जो लीलाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, वो भगवान से मिलते हैं फिर। तो जैसे भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृतम, मैं योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूं, सबको नहीं प्रकाशित करता, ऐसे जो गुरु है अपने आप को ढक के रखते हैं, रिवील नहीं करते अपनी शक्तियां, अपना ऑपुलेंस रिवील नहीं करते, छुपा के रखते हैं लज्जा के कारण, हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, ये उनका गुण होता है ह्यूमिलिटी, अपनी अपनी ह्यूमिलिटी के कारण, नम्रता के कारण वो रिवील नहीं करते। लेकिन जो उनके उनको प्रसन्न कर देता है उनके सामने फिर वो रिवील कर देते हैं सब कुछ। ये है गुरु को जानने का। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? जैसे भगवान छुपा के रखते हैं ऐसे गुरु भी अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो अगर आप चाहते हो उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, सेवा से अपने विनीत भाव से उनको गुरु को प्रसन्न करो, और गुरु जब प्रसन्न हो जाएगा तो बस भगवद्गीता है ना, भगवद्गीता एक मिनट उसमें से एक चीज पढ़ के बताता हूं, हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में होगी। गुरु की प्रसन्नता इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पे बताया गया है कि और यहां बताया है कि असली गुरु वही है जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। आप देखो कितनी हैवी बात कही है गुरु के लिए, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद, लेकिन आपको मैं दोबारा याद कराता हूं। 13वें अध्याय में जो भगवान है वो बता रहे हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। वो ज्ञान में एक बात बताते हैं, ज्ञान में एक बात ये बता रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना ये भी ज्ञान है, बहुत सारा है। और सबसे पहला है विनम्रता, विनम्रता नहीं है तो ज्ञान आएगा ही वो विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, ये श्लोक है 8, 9, 10, 11, 12 इकट्ठा श्लोक है। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, पढ़िएगा 13वां अध्याय और 8, 9, 10, 11, 12 का श्लोक जो है इसमें एक बात कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु के पास जाना। अब प्रभुपाद जी देखो क्या बात कर रहे हैं इसमें, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सुनो, मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। ध्यान से सुनना है, आप बाद में पढ़ भी सकते हो, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। तुरंत समय तो क्या होता है, तुरंत समय आज आया और कल बने कहा काम हो गया। आज तो आया था, आज देखो तो अभी भी तो आया था, वो कल देखो कहां से कहां पहुंच गया तुरंत, इसको ऐसे ऐसे तुरंत। तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है भले ही वह विधि विधानों का पालन ना कर रहा हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, नहीं समझ आई, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महान आचार्य कह रहे हैं, अगर विधि विधानों का पालन नहीं भी कर रहा और गुरु प्रसन्न हो गए तो तुरंत ही प्रगति कर जाएगा। विधि विधान तो नीचे रहेगा, सब नीचे रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसके लिए यम नियमों का पालन करना कोई बड़ी बात रहती नहीं है, वो तो एक लगता है कि मतलब पीछे की चीजें लगती हैं। जैसे 8वीं क्लास के बच्चे को 2 का पहाड़ा बहुत बड़ी बात है, 8वीं क्लास के बच्चे को 2 का पहाड़ा सुनाना जरा, क्या कह रहे होते हैं कोई बात, 8वीं क्लास में पढ़ता हूं। ऐसे ही जो गुरु को प्रसन्न कर चुका है उसके लिए ऐसे यम नियम होते हैं, जो बड़े बड़े आपको यम नियम लग रहे हैं, विधि विधान लग रहे हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे गुरु की स्थिति को, वो गुरु कौन है, तो हमारा जीवन बहुत सफल है, तब हमारा जीवन सफल है और तब हम जाग जाएंगे, तब सुप्त अवस्था में जो कंडीशन लाइफ में पड़े हुए हैं उससे निकल आएंगे बाहर। ये तो फिर वही है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, फिर मृत्यु, फिर वही जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, मतलब वही चक्कर चलता चलेगा संसार, बार 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 जन्म ले रहे हैं, बार बार गर्भ में आएंगे फिर निकलेंगे। हम भूल गए हैं इन कष्टों को, बहुत पहले हमारा जन्म हुआ कितने साल, वो भूल गए हैं, बहुत बड़ा कष्ट है, फिर कुछ कष्ट तो हम देख ही रहे हैं, बीमारियां आती हैं, कष्टदायक नहीं है, है? बुढ़ापा कितना कष्टदायक है, नीचे बैठा नहीं जाता। और बच्चे को देखो, छोड़ दे बच्चे को, लाओ यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। अब उतना छोटा बच्चा, वो तो निकलने में मजा आता है उसको, छोटा सा बच्चा हो ढाई तीन चार दिन यहां से निकलेगा। और हम निकलने की बात कर रहे हो, हम तो भैया बैठ नहीं सकते। तो ये जो है, ये चीजें आती हैं, फिर आखिर में मृत्यु आएगी। मृत्यु को हम भूले हुए हैं क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। अनुभव है मतलब बिल्कुल भूल गए हैं, पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी याद ही नहीं है बिल्कुल। और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है जब मृत्यु आती है तो 40,000 बिच्छू एकदम काटे आपको, इतना कष्ट होता है। 40,000 एक बिच्छू को काटा किसी ने, मतलब एक बिच्छू ने किसी को काटा या किसी ने किसी को नहीं काटा होगा शहरों में, आप गा देंगे ये गांव गांव में होगा शायद, हाँ गांव में अनुभव है, शहरों में तो बिच्छू है ही नहीं। अब बताओ कितना कष्ट होता है, जरा बताओ, खड़े होकर बताओ सबको, एक बिच्छू काटता है, आपका अनुभव है बताओ, मेरा अनुभव नहीं है, मैंने तो सुना है, आप बताओ। हाँ तड़पता रहता है ना व्यक्ति, इतना दर्द होता है कि पूछो, एक बिच्छू ने काटा दो। और गरुड़ पुराण में लिखा है इतना कष्ट होता है कि 40,000 बिच्छू एकदम काट ले आप इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो क्या हाल होता होगा, इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। अब भूल गया, इसलिए भूल जाते हैं, जो जितना ज्यादा कष्टदायक होता है भगवान का ये सिस्टम है वो भुला देता है, ताकि फिर माया को भोगोगे कैसे, ये तो माया है। माया का एक क्या है, एक पास क्या है, भुला देती है, जो कष्ट आया भूल गए। लात पड़ी थी पिछली बार, बहुत तेज लात पड़ी थी, भूल गए, याद नहीं, फिर हम आया आगे पिछली बार लात पड़ी थी, भूल गए। ये है भगवान का सीन। तो लेकिन ये गुरु कितनी कृपा कर रहे हैं, हमें रिवील कर रहे हैं, हम बच सकते हैं इन चीजों से और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं और मनुष्य जीवन का हम आनंद ले सकते हैं। नहीं तो पशु अच्छे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो पशु जीवन, पशु शरीर बहुत अच्छा है। अगर इंद्रिय तृप्ति ही करनी है, ईटिंग वेटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग, तो आके राधा राधिका रमण को प्रार्थना किया करो, पशु का शरीर दे दो, इंद्रिय तृप्ति करनी है वो देखो कितना। कई लोग ऐसे सोचते भी हैं, ये पागल है वो कलयुग में। तो यही हम विराम देते हैं, बातें तो बहुत हैं लेकिन आगे भी प्रोग्राम है। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुना आपने बहुत ही प्यार से। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट और चर्चा कर लेंगे। करुणा चंद्र प्रभु, हरे कृष्णा, रोहिणी मंदिर बना रहे हैं बिल्कुल बड़े,
धन्यवाद। हरे कृष्णा भैया, मैं एक चीज कही थी, जब हम गुरु को संतुष्ट करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, तो वो अपना को रिवील करते हैं, तो गुरु रिवील करते हैं, इसका क्या मतलब है सुखदेव साहब?
कृष्ण जैसे कृष्ण ने रिवील किया, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को रिवील किया ना अपना ऐश्वर्य दिखाया, गुरु भी ऐश्वर्यवान है, गुरु के ऐश्वर्यवान है, गुरु के पास बहुत शक्तियां हैं, रिवील करते हैं और दे भी सकते हैं आपको। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दी, सबको थोड़ा दी, जिनको जिन्होंने प्रभुपाद जी को खुश किया उनको शक्तियां दी, तो आज वो आगे शक्तिमान हो गए, वो एम्पावर किया, रिवील करते हैं आपको, एम्पावर कर देते हैं आप। जब गुरु मतलब जैसे भगवान कितने सुंदर है, वो सुंदरता हमें तभी नजर आएगी ना जब भगवान रिवील करेंगे, नहीं तो यहाँ कहाँ इतनी सुंदर, हमें तो अभी भी हम आकर्षित हैं यहाँ की सुंदरता पे, तो ये रिवील थोड़ा हुआ भगवान, हम तो अभी भी इसी को सुंदर समझ रहे हैं, इन चीजों को, यहाँ के संसार को, नहीं तभी तो हम फंसे हुए हैं, यहाँ के रिश्ते और नातों को सुंदर समझ रहे हैं, स्थाई समझ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसमें, इनमें कहाँ आनंद ले रहे हैं अभी हम, कहाँ सुंदरता, रिवील नहीं किया ना भगवान। जब रिवील करेंगे, रिवील का मतलब क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, ये रिवील है ना, ये है ना श्री भगवान, तो लाखों 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 काम देवों को आकर्षित करते हैं, हमें तो आकर्षित नहीं कर रहे, हमें तो काम देव आकर्षित कर रहे हैं, तो रिवील नहीं किया ना भगवान ने, ऐसे गुरु है।
गुरु जब रिवील करेंगे तो गुरु के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तब पता लग जाएगा ना ऐश्वर्य। प्रभुपाद जी का ऐश्वर्य अब पता लग रहा है हमें जाने के बाद। प्रभुपाद जी के समय में कितने लोग थे जो प्रभुपाद जी को जानते थे या मानते थे। इसी तरह से हम भी जो हमारे गुरु के समान लोग हैं उनको उनमें हम कमियां देख लेते हैं, कमियां थोड़ा है, भगवान में कोई कमी नहीं है। इस तरह से गुरु में कमी थोड़ा है कोई। अगर आप गुरु में कमी देख रहे हो तो ऐसी है कि जैसे चांद को थूक रहे हो, आप चांद को देख रहे हो और दाग है तेरे में, कैसे थूक करो, चांद को थूक के देखो क्या हाल होता है, सर ने कोशिश करो पता लगेगा क्या होता है। ऐसे हमारा हाल होता है, गुरु में दोष निकालोगे भगवान में दोष निकालोगे तो क्या है, अब बेड़ा कर करो। गुरु में भगवान में कभी दोष नहीं निकालने, हमें अपने में दोष निकालने तो इधर निकालो ना, दोष तो इधर है, उधर थोड़ा दोष, तो परफेक्ट है। उनका जो कार्य करने का तरीका है वो अलग है, वो आप क्या समझोगे। एक छोटा सा बच्चा बड़े लोगों की बातें कहां समझ सकता है, ऐसे हम है, हमारी वो दृष्टि कहां जा रही है कि गुरु क्या क्या कर रहे हैं। गुरु फॉलन जीव को बचाने के लिए, पतित जीवों को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। कैसे समझोगे आप, कहां से जाएंगे आप, ये करुणा है उनकी, आप करुणा चल रहे हो, उनकी करुणा है, करुणा के सागर है वो, पतितों को उद्धार करने के लिए पतितों के नीचे घुस जाएंगे वो, थोड़ा समझ आएगा आपको क्यों कर रहे हैं ऐसे। आपको क्या पता कैसे पतितों का उद्धार करना चाहते हैं, क्या उनकी करुणा है, क्या उनका कंपैशन है, ये रिवील होती है आपको, ये उनका ऐश्वर्य रिवील होता है जब आप उनकी सेवा करते हो, वो आपसे खुश हो जाते हैं, तो सखा मतलब वो आपसे रिलेशनशिप बन जाता है ना, वो अपना समझते हैं आपको, फिर वो समझते हैं मेरा ही व्यक्ति है, इसमें मेरे में कोई फर्क नहीं। जैसे अर्जुन में और कृष्ण में क्या फर्क है, कृष्ण अर्जुन एक ही है, अर्जुन को अपना ही समझ रहे हैं, ये मेरा है वो उसका मेरा है, कृष्ण अर्जुन को दूसरा थोड़ा समझते हैं, उनका शिष्य बना लेकिन उन्होंने दूसरा थोड़ा समझा, वो मेरा ही है ना, क्योंकि वो इनसे ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए गुरु को मैं समर्पण करना है और गुरु को प्रसन्न करना है और कभी भी कोई भी दोष नहीं देखना। और जब आप गुरु आपसे प्रसन्न होंगे, गुरु से रिलेशनशिप होगा, तो आप कोई भी चीज देखोगे पूछ भी सकते हो, महाराज जी कैसे मैं भी तो ऐसे नजर आ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर देंगे आपको, बता देंगे, आम व्यक्ति को नहीं बताएंगे, वो आम व्यक्ति से छुपना ही चाहते हैं। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी से लैट्रिन में जाके जप करते थे, लैट्रिन में चले जाते थे छुपने के लिए, लैट्रिन में जाके जप कर रहे हैं, जहाँ लोग मल त्यागते हैं गौर किशोरदास बाबा जी वहां जाके बैठ जाते थे, है ना। तो गुरु जी अपने आप को छुपाने के लिए कई तरह के कार्य करेंगे। जैसे श्रीनिवास ठाकुर थे, उनके घर के आगे उन्होंने डाल दिया है? क्या डाल दिया, सामान डाल दिया माँ दुर्गा की स्तुति का, तो आगे कह रहे हैं हाँ मैं तो माँ का ही भक्त हूँ, कृष्ण का तो भक्त हूँ ही नहीं, मैं तो कृष्ण का बिल्कुल भक्त नहीं हूं, मैं माँ का देखो देखो आप देख लो प्रूफ है। ऐसे ही गुरु करेंगे आपके साथ, आज और दूर चले जाएंगे रिवील करने की जगह, अगर आप ईर्ष्या या द्वेष रखोगे तो। नहीं समझ आ रही बात है, कई लोगों को नहीं भी आ रही होंगे, समझ आपको तो आ गई। थैंक यू, आप इसको समझा, थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की।